ओम शांति। कैसी चल रही है आपकी भक्ति? संतुष्टता है? अब इस भक्ति को सदा चलाना है। नितिन भाई भी आए हैं, वाह। नितिन भाई आगे बैठे हैं, सर्जन हैं, दिखा दो चेहरा। सर्जन हैं, बड़े हैं, लेकिन सिंपल, देखो कितने हैं, ऐसे ही रहते हैं सदा। मैं समझता हूँ ड्रेस भी यही पहनते हैं। हाँ, यही पहनते हैं। सिंप्लिसिटी इज द साइन ऑफ ग्रेटनेस, महानता की निशानी है ये। बहुत अच्छा। और कौन? श्रीनिवास? नहीं। तो आज मैं कुछ ऐसी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। भाई थोड़ा फैन भी चला देना, ऊपर वाला थोड़े पे चलाएगा वो थोड़ा फैन। ऐसी चर्चा हम करेंगे कि जीवन में आपकी ये भक्ति सदा सदा चलती रहे और ये जो ब्राह्मण जीवन है ये सुख भरा जीवन अनुभव होता रहे। सुख सवेरे सवेरे भी सुख देता है बाबा, सारा दिन पूरा जीवन हमारा सुखों से भरा है। एक मुरली आप सुनेंगे, एक संडे ये आ रहा है, एक गया, अगला संडे उससे भी शायद अगला है, जिसमें बाबा ने कहा सवेरे उठकर भाग्य को रोज अलग अलग अपने भाग्य को याद किया करो, फिर कहा प्राप्तियों को याद किया करो, तीसरा कहा टाइटल्स को याद किया करो। तो मैं आप सबको होमवर्क दे रहा हूं, आप अकेले भी लिख सकते हो अपनी डायरी में, मिलके भी लिख सकते हो। भाग्य की 10 पॉइंट, क्या क्या भाग्य मिला है मुझे इस जीवन में। प्राप्तियों की 10 पॉइंट, स्वमान की कुछ पॉइंट 10-12, टाइटल जिन्हें कहते हैं, राजीव तुम सबसे पहले करोगे, 30 पॉइंट हो जाएंगे। नितिन भाई ठीक है ना? सवेरे उठ के थोड़ी नजर डाल ली, 1-2 मिनट 3 मिनट सवेरे के लिए ये परम आवश्यक होता है कि हमारी बुद्धि चलनी शुरू हो जाए। बहुतों की बुद्धि सवेरे बिल्कुल शांत रहती है तो नींद आ जाती है। कई माताओं को मैं देखा नींद आ जाती है योग में, उसका कारण यही है। और घरों में तो जल्दी आ जाएगी क्योंकि आप अकेले बैठे होंगे। तो चिंतन अगर सुंदर होगा मन में, नशा हो जाएगा, खुशी हो जाएगी, तो सवेरे का समय सुंदर अनुभवों में बीतेगा। ये सबको याद रखना है। जितने सुंदर संकल्प होंगे मन में उतना ही श्रेष्ठ अनुभव होगा। ऐसे ही बैठ गए शांत में, ठीक है बीज रूप भी करना होता है, लेकिन अगर शुरू में ही बीज रूप शुरू कर दिया और मन शांत है तो नींद आ जाएगी, क्योंकि नींद से उठे हैं हम। कईयों की नींद पूरी नहीं होती है, कईयों का भोजन रात का भारी हो गया होता है तो नींद आ जाएगी। सवेरे अपने को श्रेष्ठ विचारों से चार्ज करना है सबको, ये बात याद रखेंगे। तो रोज बाबा का श्रेष्ठ सुखदायी बहुत अद्भुत अनुभव रहेगा, हमें लगेगा हमारी उससे मुलाकात हो रही है। बातें बहुत सुंदर होंगी, ये बात आपकी खत्म हो जाएगी कि हम ही बाबा को कुछ कहते हैं, बाबा तो नहीं कहता, सुनते नहीं हम बाबा की बात, क्या बाबा हमें कह रहा है ये हमें पता नहीं चलता। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। मिलन वो एक अलग अनुभूति है। तो मिलन का अनुभव रोज सवेरे, उससे हमें बहुत अच्छी दृष्टि मिले सवेरे। ये बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने कहा है रोज सवेरे बाप से दृष्टि लो और संसार को दृष्टि दो। हमें हमारी दृष्टि का महत्व भी समझ लेना चाहिए और बाबा से जो हमें दृष्टि मिलेगी उसका भी महत्व। हम जब संसार को दृष्टि देंगे बड़ा महत्व है उसका। जिस स्वमान में स्थित होकर दृष्टि देंगे वैसे ही वाइब्रेशंस दूसरों को मिलने लगेंगे। एक बात और, कई आप में से नए भी बैठे होंगे 2-4-5 साल के, ऐसे तो वो किसी को भी पता ही नहीं होता है। एक है वाइब्रेशंस के द्वारा सर्विस करना, सकास देना। दूसरा है मन के द्वारा सर्विस करना, जिसे मनसा सेवा कहते हैं। दोनों लगभग एक भी हैं, थोड़ा अंतर कर देते हैं। हम जब संसार को दृष्टि दें और जब संसार को सकास दें तो कुछ संकल्प भी दे दें, पूर्वज हूं मैं, इस संकल्प से दृष्टि दें और संकल्प कर दें सभी आत्माएं विघ्नों से मुक्त हो जाएं। आपको अपने परिवार के लिए करना हो, सवेरे अपने परिवार को दृष्टि देकर संकल्प कर दें, हमारे परिवार में सभी के अंदर प्यार पैदा हो जाए, सबका जीवन प्यार से शांति से भरपूर हो जाए। भाई तेज चला दिया, आवाज गड़बड़ हो जाएगी। ये बहुत तेज चला दिया, सारे तेज चला दिए एक नंबर पे। तो सभी ध्यान दें इस बात पे, संकल्प भी अच्छे। जब हम संसार को दृष्टि देंगे और वाइब्रेशंस भी बहुत अच्छे देंगे, चलेंगे अभी अनुभव करेंगे हम। रेड लाइट कर दो भाई। हम सूक्ष्म लोक में चलेंगे, बाबा से दृष्टि लेंगे और संसार को दृष्टि देंगे। संसार को दृष्टि देने में ग्लोब को भी हम दृष्टि दे सकते हैं। फील करें एक सेकंड में, मैं ऊपर हूं, सूक्ष्म लोक में। ये सूक्ष्म वतन, यहां चारों ओर सफेद प्रकाश है। ऐसा सफेद प्रकाश जैसे कि एक साथ अनेक पूर्णिमा के चंद्रमा उदय हो गए हों। परमानंद है, सामने देखें बाप दादा को, एक बहुत ही श्रेष्ठ तेजस्वी आभा मंडल के बीच में है बाबा। मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं, बाबा दृष्टि दे रहे हैं, परम सद्गुरु दृष्टि दे रहे हैं। ये दृष्टि विघ्नों को नष्ट करने वाली है, प्यार की अनुभूति कराने वाली है, ऐश्वर्यी बनाने वाली है, अब यहीं से संसार को दृष्टि दें, अपने सामने ग्लोब देखें, दृष्टि दें और फील करें मेरे मस्तक से और नैनों से गोल्डन किरणें निकलकर इस ग्लोब में समा रही हैं। मैं फरिश्ता वापिस ओम शांति। हमें याद रखना है बाबा सबसे ऊंचा है, स्थिति भी सबसे ऊंची तो धाम भी सबसे ऊंचा। हमारी रूहानी स्थिति जितनी ऊपर उठेगी उतना ही उससे मिलन के सहज सुंदर अनुभव होंगे। जैसे मैं एक बात कहता था पहले, आज फिर याद आ गई मुझे, वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में बहुत सुंदर ज्ञान तो है, लेकिन जिन्होंने वो लिखे थे वो ऋषि, उनका रूहानियत का लेवल बहुत ऊंचा था, प्योरिटी उनकी बहुत ऊंची थी। जिन भावों से उन्होंने लिखे थे, एक होता है शब्द, आजकल के जो विद्वान हैं वो शब्द करते हैं, केवल शब्दों की व्याख्या, भावों को कम जानते हैं। उसका कारण है कि लिखने वालों की स्पिरिचुअल स्टेट जितनी ऊंची थी, पढ़ने वालों की उसकी भेंट में बिल्कुल नीची है। आजकल पवित्रता का तो प्रश्न ही नहीं रहा, इसलिए उन मंत्रों के अर्थों को समझ लें ये सब लोग, इम्पॉसिबल है। ठीक है, सही, शिव बाबा से मिलन करना है, वो सबसे ऊंचा महान पवित्रता का भी सागर, हम जानते हैं उसे। हमारा लेवल भी जितना जितना ऊंचा उठेगा उससे मिलन की सहज अनुभूति अमृत वेले श्याम को, और आप चाहें जब चाहें कर सकेंगे, उससे बात कर सकेंगे, उसे कॉन्टेक्ट कर सकेंगे, क्लियर फीलिंग होगी, अपनी बात उसे सुना सकेंगे, अपने मन के सारे बोझ उसको देते चलना है। ये कला सीख लें सभी, जिम्मेदारियों के बोझ, मन के बोझ, मन की कोई चिंताएं, कोई ऐसी बात जो आपको उलझन में डाल रही हो, बाबा को अर्पित करें। यह समर्पण भाव बहुत गहरा है। समर्पण भाव का अर्थ है जब हमने उसको अर्पित कर दिया, फिर हमारे मन पर कोई बोझ रहना नहीं चाहिए। अगर मन पर फिर भी बोझ है, चिंताएं हैं, तो हमें समय लेना चाहिए, अभी समर्पणता पूरी आई नहीं है, यहां तक हमें पहुंचना है। तो जिम्मेदारियां, कोई ऐसी बात हो रही हो, क्या होगा, जीवन में बहुत बातें आती हैं, एक हफ्ते में ही दो चार बातें आ जाएंगी, क्या होगा इसका, परिवार का, बिजनेस का, नौकरी धंधों का, ये क्या होगा इसको बदल दो बाबा में, बाबा को सौंप दो, वो जो करेगा वो हमें स्वीकार होगा और देखना वो कितना सुंदर करता है। बाबा के मिलन के लिए और अपनी स्थिति को बहुत महान बनाने के लिए अशरीरीपन का अभ्यास और स्वमान का अभ्यास निरंतर बढ़ाते चलना है। स्वमान को अपना जीवन बना दें आप। स्वमान का सीधा सा अर्थ है जो कुछ बाबा हमें याद दिलाते हैं, जो टाइटल देते हैं, उन्हें स्वीकार कर लें। हमारा मन उसको रिजेक्ट न करे। जैसे बाबा ने कहा, तुम इस सृष्टि की महान आत्मा हो। क्या हमारे विवेक ने, हमारी बुद्धि ने इसको मान लिया, या हम सोचते रहते हैं हम कहां महान हैं, बाबा ऐसे ही चढ़ाता रहता है। सोच लो क्या सोचते हैं हम, बाबा तो खुश कर देता है, हमें प्यार करता है ये कह के। लेकिन वो कह रहा है तुम पूर्वज हो, हमने मान लिया है। वो कह रहा है तुम कल्प कल्प के विजयी रतन हो, हमने मान लिया है। या हम सोच रहे हैं हमारी तो क्रोध पर विजय होती ही नहीं है, कैसे विजयी रतन हैं हम। लेकिन अगर ये नशा चढ़ जाएगा तो सब विकारों पर विजय प्राप्त करने में मदद मिल जाएगी। तो ध्यान देंगे, एक बहुत सिंपल विधि आपके सामने है। 10 स्वमान लिखेंगे आप रोज। देखो कैसे लिखेंगे, सुन लो, 108 बार नहीं। कैसे लिखेंगे, पहला स्वमान आपने लिखा, मैं एक महान आत्मा हूं, इसको पेपर पे लिख लिया डायरी में। अब इसको अपने अंदर समाना है। कैसा चिंतन करना है, बिल्कुल शांत में बैठेंगे 10 मिनट। ये साधना आप थोड़ा दिन कर लो, ये पूरे जीवन भर करने की जरूरत नहीं, 21 दिन कर लेना। 10 मिनट रोज देना, कभी भी सवेरे 6 बजे 5 बजे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, शांत होता है सब कुछ। ये सच है कि मैं महान हूं, भरेंगे अपने अंदर। स्वयं भगवान ने कहा है तुम महान आत्मा हो, मैं महान हूं। इस जन्म में मुझे भगवान मिल गए, वो टीचर बन के पढ़ाने आ गए, उसने मुझे बता दिया तुम देव कुल में थे। सच है कि मैं महान हूं। 21 दिन भरेंगे ना अपने अंदर, ऐसे 10 स्वमान ले लेना, उसको अपने अंदर भर देना। बना अंतर मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा विवेक, हमारी विजडम, उसको स्वीकार कर ले, तुम ये हो। देखना जीवन किस तरह सुंदर होता है। भाई फैन बंद करा देना, अनिल भाई बंद करा देना, कितना सुंदर जीवन होता है। और सुंदर जीवन का एक आधार सभी याद रखेंगे, हमारा मन व्यर्थ से मुक्त होता चले। इसको अपना लक्ष्य बना लें आप जीवन में। और ये ऐसी साधना है जो बहुत जल्दी पूरी नहीं होती, लोग 100-100 साल में भी नहीं कर पाते। लगातार हमारी प्रैक्टिस चले, व्यर्थ पर चिंतन, तेरा मेरा पर दर्शन, ईर्षा द्वेष, इच्छाएं लोभ मोह ममता, अहंकार, बदले की भावना, ये अनेक चीजें व्यर्थ को जन्म देती हैं। व्यर्थ को जबरदस्ती दबाया नहीं जा सकता। कोई सोचे मुझे व्यर्थ सोचना नहीं है, इससे काम नहीं चलेगा। व्यर्थ के जो बीज हैं उन पे सभी को काम करना पड़ेगा, एक एक को हटाते चलेंगे, एक एक पे वर्क करने की जरूरत पड़ती, ईर्षा उस पे वर्क करेंगे, क्रोध पे मेहनत करेंगे थोड़ा लंबा समय, ईर्ष्या और परचिंतन भी एक दिन में नहीं जाते, समय लगता है, भिन्न भिन्न पॉइंट्स यूज करेंगे ताकि हम ईर्ष्या से मुक्त हो जाएं। मैं एक बता देता हूं जिसको मैंने यूज किया अपने जीवन में। कोई आगे बढ़ रहा है, कोई व्यक्ति योग्य है, किसी की महिमा हो रही है, हमें उसके लिए ईर्ष्या होती है। मैंने सोचा ये व्यक्ति आगे बढ़ा इसलिए इसकी महिमा हुई ना, हम भी आगे बढ़ें तो हमारी भी होगी। उससे ईर्ष्या करने से हमें क्या मिलेगा, हम भी आगे बढ़ें। उसका नाम हो रहा है, वो अच्छे कार्य कर रहा है, हम भी नाम चाहते हैं तो नाम की भीख क्यों मांगें, हम अच्छे काम करें हमारा नाम होगा। हम किसी से ईर्ष्या क्यों करें, ईर्ष्या तो अग्नि है। हम इतने महान बने संसार हमारी ओर देखे, ये चिंतन है, इससे वो चीजें निकलती जाएगी। पर चिंतन हम क्यों, हम इसलिए बाबा के पास थोड़ा ही आए हैं कि हम दूसरों का चिंतन करेंगे। मुश्किल से तो ज्ञान मिला, स्वचिंतन मिला, भगवान का चिंतन करने का आधार मिला। अब भी पर चिंतन में रहे तो इस जीवन का सुख कब लेंगे। ये चिंतन हमें व्यर्थ चिंतन से मुक्त करेगा। क्लियर है ना? तो हम अपने जीवन की एक सुंदर साधना बना लें, स्वयं को व्यर्थ से मुक्त करना। पसंद है? और ये साधना तब होगी जब इस चीज पे बहुत गहरा अटेंशन हो कि भाई मुझे इस तरह के जो संकल्प चलते हैं उनका बीज क्या है। बीज समझ में आएगा तो हम बीज को जला सकेंगे। तो बहुत है शरीरीपन का अभ्यास, उसमें फरिश्ते स्वरूप का भी अभ्यास आ जाता है। मैं एक घटना आपको सुना देता हूं जो मैं प्राय सुनाता रहता हूं और बहुत अच्छी है वो। अव्यक्त बाबा की मुरली चल रही थी शांतिवन में, बीच में ही बाबा ने सुनाया कि आज वतन में एक सीन इमर्ज हुआ, वो सुनाते हैं। तीन फरिश्ते इमर्ज हुए, नाम बताए उनके। बाबा ने हाथों में रंग बिरंगे हीरे लिए, पाउडर बना दिया, तीनों पे छिड़क दिया और तीनों के अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैलने लगी। फरिश्ता स्वरूप ये बाबा ने सीन दिखाया कि तुम भी ऐसा करो तो हम भी ऐसा किया करें। बाबा के पास हैं हम, हीरो का पाउडर बाबा ने मेरे ऊपर छिड़क दिया और मैं बन गया फरिश्ता। रंग बिरंगी किरणें फैलने लगी, मेरे चारों ओर पावरफुल आभा मंडल बन गया। ये अभ्यास याद रखेंगे सभी, ये योग साधना ऐसी साधना है, इसमें हमें बहुत बहुत अभ्यास करने होते हैं। एकांत योगियों के लिए वरदान होता है। एकांत में अगर हमें स्वचिंतन करने का रस लग जाए, ध्यान देंगे, ये कईयों को एकांत में व्यर्थ संकल्प भी चलने लगते हैं, लेकिन अगर हमें रस लग जाए अच्छा चिंतन का तो एकांत से सुंदर साधना, एकांत से सुंदर सुख और कहीं नहीं मिलेगा। इस पे ध्यान देंगे। और एकांत में सुख लेना है तो स्वमान और बाबा को शुक्रिया, दो बातों से शुरू करें। शुक्रिया जो मैंने आपको कहा बाबा से प्राप्तियों की 10 पॉइंट की लिस्ट तैयार करो, 16 भी कर सकते हैं आप, मुझे बाबा से क्या क्या मिला और उसके लिए बाबा को शुक्रिया। जैसे ज्ञान मिला बहुत बड़ा, बहुतों को ज्ञान के खजाने की कदर नहीं होती, उन्हें पता नहीं चलता कि ज्ञान भी बड़ा गहरा ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान की कोई खोज नहीं थी जीवन में, जो मिल गया वो सहज वही परफेक्ट है। लेकिन जिसको ज्ञान की खोज थी, कौन है भगवान ये जाने तो सही, मैं कौन हूं इसकी खोज रही युगों से, पता ही नहीं चला। हम देवता थे ये तो किसी शास्त्र में वेदों में लिखा ही नहीं कहीं, देवताओं का पूजन करो ये सब लिखा है। बड़ा गहरा ज्ञान मिला है तो शुक्रिया निकलेगी बाबा के लिए। एक मुरली में बाबा कह रहे हैं, मैं आकर तुम्हें माया से युद्ध करना सिखा रहा हूं, युद्ध करके जीत पाना माया पर, ये कोई नहीं सिखा पाया। गीता में भी ये तो लिखा काम महाशत्रु है, काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं, पर इसे जीतो कैसे इसकी कहीं चर्चा नहीं है। क्रोध बहुत बुरा है, अग्नि है, इससे पश्चाताप होता है, बुद्धि नष्ट होती है, पर क्रोध को जीतो कैसे ये यथार्थ विधि कहीं नहीं थी। इच्छाएं बहुत बढ़ती हैं, लोभ होता है, सबको ही होता है, दुनिया में कंपटीशन है, कैसे वो कम हो इसका पता किसी को नहीं चला। महात्मा बुद्ध ने शुरू किया, इच्छाएं दुखों का कारण है, इच्छाएं कम करो दुख कम हो जाएंगे, पर इच्छाएं कम तो तब होंगी जब ईश्वरीय सुख मिले। हमें जब बहुत ईश्वरीय सुख मिलता है तो संसार के वैभव फीके लगने लगते हैं। तो बाबा ने बहुत सुंदर ज्ञान दिया है, तो अपने जीवन को बदलेंगे तो बाबा के मिलन के बहुत ही सुंदर अनुभव रहेंगे। ये सब्जेक्ट तो बहुत ही श्रेष्ठ है और बड़ा भी है, मिलन के सुंदर अनुभव उनको बहुत होंगे, ध्यान से सुन लेंगे। और ये भी हमारी साधना है जो मैं अब बोलने जा रहा हूं, जो अपने चित्त को शांत करेंगे। सोच लें, भटक बहुत गया है मनुष्य का चित्त युगों से, भटक गया है या नहीं, न जाने कहां कहां भटकाया है मनुष्य ने अपने को, वासनाओं के पीछे, तृष्णाओं के पीछे, मोहमता के पीछे, मान सम्मान के पीछे बहुत भटके हैं सब। उसको शांत कर देना, और शांत करने के लिए पहली जरूरत है ज्ञान। ज्ञान को ज्ञान का बल बना दें, केवल ज्ञान नहीं, मुरली के पॉइंट्स नहीं, ये नहीं, बहुत मजा आता है मुरली में, ठीक है मजा आना ही चाहिए, इतना ही नहीं, मुरली बल बन जाए हमारा, जो हमारे चित्त को शांत करने लगे। किसी समस्या में मन उलझ गया है, किसी के शब्द सुनकर मन उलझ गया है, किसी ने इंसल्ट कर दी है, बहुत अनादर हो गया है, मन भटक गया है, शांत हो गया है, इस अशांति को ज्ञान के द्वारा ठीक कर दें, शांत कर दें। जो अपने मन को शांत करना सीख गए वो संपूर्ण ज्ञानी। ड्रामा का बहुत सुंदर ज्ञान हमें मिला है, बड़ा गहरा ज्ञान है ये, इसकी भी शास्त्रों में कहीं चर्चा नहीं, किसी ने टच ही नहीं किया था। ये संसार एक नाटक है और हम इसमें एक्टर हैं, सबको पार्ट मिला हुआ है और ये ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है। इतना ही लिखा कहीं कहीं, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना आई। कोई कहते भगवान ने ये खेल रच दिया, तो कोई कहते नहीं ऑटोमेटिक रचा गया, भिन्न भिन्न फिलोसोफीज हैं दुनिया में। ड्रामा के ज्ञान से चित्त को शांत करेंगे। जो कुछ हो रहा है इस पॉइंट की प्रैक्टिस करेंगे सभी बहुत, जो कुछ हो रहा है वो एक्यूरेट है, वही होना चाहिए। अब ये जो दूसरी लाइन है ना, वही होना चाहिए, ये बहुत गंभीर है, इसको समझना सहज काम नहीं है राजीव। जो हो रहा है वही होना चाहिए। एक व्यक्ति गड्ढे में गिर गया, गिरना ही चाहिए, कहेंगे ऐसा? कोई सुन ले तो कहेंगे कितने गंदे लोग हैं, गहरे गड्ढे में गिर गया तो गिरना ही चाहिए, लेकिन इसके पीछे क्या सूक्ष्मताएं हैं, क्या रहस्य हैं, ये तो समझना होगा ना। बहुत अच्छी कहानी, कभी कभी मैं अखबार की छोटी सी कहानी पढ़ लिया करता हूँ, छोटी छोटी सी होती हैं। नारद जी विष्णु के पास पहुंचे, प्रभु तुम्हारे राज्य में क्या हो रहा है, कलयुग में पापी लोग मजा कर रहे हैं, बुरा काम करने वालों को बड़ा अच्छा फल मिल रहा है, और जो सज्जन लोग हैं, धर्म परायण हैं, ईमानदार हैं, वो बेचारे भूखे मर रहे हैं, कैसा तुम्हारा न्याय है। कहा कोई घटना तो सुनाओ। कि अभी अभी मैं आ रहा हूं, एक गाय दलदल में फंस गई, एक चोर जा रहा था, वो दलदल से कैसे निकले, उसने गाय के ऊपर पैर रखा और उधर कूद गया, और जब वो आगे गया तो उसे मिल गई असरफियां सोने की। एक बहुत अच्छा भक्त ब्राह्मण जा रहा था, उसने बहुत जोर लगा के औरों को भी बुलाया, गाय को निकलवाया, जब वो आगे गया तो गड्ढे में गिर गया। कैसा है तुम्हारा न्याय है, मेरी तो समझ में नहीं आता। मुझे बड़ा मजा आ रहा था इस कहानी को पढ़ के, इसलिए मैंने सारी पढ़ ली थी। तो प्रभु जी ने उत्तर दिया कि तुमने जो बाहर से देखा वो तो ठीक है, ये जो ब्राह्मण था जो गड्ढे में गिर गया ना, वो समय इसकी मृत्यु का था, बस ये गिर के थोड़ी चोट लगी फिर निकल गया, इसकी मृत्यु टल गई है। और वो जो चोर था वो बहुत बड़ा खजाना लेने जा रहा था, लेकिन उसने पाप कर दिया ना वहां, इसलिए उसको 5 असरफियों से ही बस पूरा हो गया उसका काम, उसको आज बहुत खजाना मिलने वाला था। ब्राह्मण ने पुण्य किया तो उसकी मृत्यु टल गई, थोड़ी सी चोट लगी बस। तो इस संसार में जो कुछ हो रहा है, तो हम कहेंगे ना ब्राह्मण को गड्ढे में गिरना ही चाहिए था क्योंकि उसकी मृत्यु टल गई। तो ये इतने गुह्य रहस्य हैं विश्व ड्रामा के, जिसके साथ जो कुछ भी हो रहा है, ध्यान से सुन लेंगे, सब अप्लाई करेंगे इसको अपने जीवन में, जिसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार वो स्वयं है। हम दोस्त तो बहुतों को दे देते हैं ना, परिवारों में ध्यान दें अपने अपने, बहुत कुछ हो रहा है आजकल, खेल बिगड़ रहा है और सबकी उंगली दूसरों की ओर है, ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, और जिसने ये अपनी उंगली, ये उंगली अपनी ओर करनी सीख ली, वो अनेक समस्याओं को पार कर लेता है, उनके रहस्यों को समझ लेता है, अपने को ठीक करते ही सब कुछ ठीक होने लगता है। बाबा के शब्दों में, स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। इसलिए अपने को बदलना है, और अपने को बदलने का फॉर्मूला है, बीज है, अपने विचार बदल दो तो जीवन बदल जाएगा। विचार, जितने विचार मान होंगे जीवन उतना ही श्रेष्ठ हो जाएगा। तो सभी बहुत अच्छी साधना करेंगे ताकि निरंतर प्रभु मिलन के अनुभव, निरंतर कह रहा हूं मैं, हमें लगे वो सदा हमें साथ दे रहा है, ये अनुभव होगा। हमें लगे कि जब भी हम उनको बुलाते हैं वे तुरंत आ जाते हैं, हमें लगे वो हमारी हर बात सुन के उसका अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, हमें लगने लगे समस्याओं में हम अकेले नहीं हैं, सर्वशक्तिवान हमारे साथ है, ये होगा उससे निरंतर मिलन का अनुभव। केवल बुद्धि योग ऊपर लगा रहे इतना ही नहीं, ये सब अनुभव। तो हम अपने को बदलते चलें, अपने को महान बनाते चलें, विचारों को शुद्ध करते चलें, तो हमें बहुत सुख मिलेगा। याद करेंगे, बाबा की मुरलियों में आता है, मैं उन सब का सार बता देता हूं। बाबा किन बच्चों को बहुत प्यार करता है, जो दूसरों को सुख देते हैं, जो सच्चाई के मार्ग पे चलते हैं, जो सच्चे दिल से यज्ञ की सेवा करते हैं। सुखदाई आत्माएं भगवान को बहुत प्रिय हैं, जो दूसरों को दुख दे रहे हैं वो उसे प्रिय नहीं है। जो नम्रचित्त हैं, निरंकारी हैं, वही उसके प्यार के पात्र हैं। तो हम इन धारणाओं पे ध्यान देंगे। मुरली पे सभी को बहुत ध्यान देना है, क्योंकि मुरलियों में है ज्ञान का भंडार, ज्ञान का अथाह खजाना। वो जितना जितना हमारे अंदर भरेगा, व्यर्थ भी समाप्त होता जाएगा। हम ऐश्वर्यपन की स्थिति का सहज सुख लेंगे, अनुभव करेंगे, और जितना ऐश्वर्यपन बढ़ेगा योग युक्त जीवन बढ़ेगा। योग युक्त होने का अर्थ है प्रभु मिलन। हमारा योग अभ्यास भगवान की खोज के लिए नहीं है, योग अभ्यास माना प्रभु मिलन, परमात्म मिलन। तो सभी माताएं बहुत बैठी हैं, अपने को अनेक उलझनों से मुक्त करेंगे। मैं इस पे ज्यादा क्लास नहीं ले रहा हूं, एक दो लाइन बोलता हूं। अपने को मुक्त करना अपने हाथ में। बोलो क्या विचार है बहनों का, ये बात ठीक है या नहीं? अपने को मुक्त करना अपने हाथ में, कोई और हमें बांध नहीं सकता। मनुष्य अपनी उलझनों से, अपने सोच से खुद परेशान होता है, खुद को खुद बंधन में डालता है। मुक्त करना है अपने को। मैं, मेरे पास माताओं की बहुत कहानियां आती हैं, इसलिए मैं माताओं को कहता हूं मुक्त हो जाओ। हो जाएंगे माताएं मुक्त? परिवार हैं आपके, आपकी जिम्मेदारियां हैं। उलझाना नहीं है। कैसे उलझता है मनुष्य? मैं एक उदाहरण हमेशा देता हूं, आज फिर सुन लें, क्लासेज में तो आपने सुना होगा। दो माताओं की कहानी है। एक ने कहा हुआ था बच्चों को, मेरी आज्ञा के बिना कुछ नहीं करना। करते हैं ना बहुत लोग, पति को भी कह देंगे जो मैं कहूं वही करना है। मेरी आज्ञा के बिना पत्ता इधर से उधर नहीं। देखो पति देव बहुत खुश हो गए हैं। तो क्या है, अब मान लो उन्होंने कुछ बिना पूछे कर दिया तो झगड़ा, परेशानी, तुमने क्यों किया, पूछते नहीं हो, अपनी बुद्धि चलाते रहते हो, अपने को ज्यादा अकलमंद समझ, मैं तुम्हारी मां हूं। परेशान रहती हैं, दूसरों को भी करती हैं। दूसरी माँ, सुनो अब उसकी बात, ज्ञानी माताओं की बात है दोनों, और ये सच्ची घटनाएं हैं। माताएं मुझे सुनाया करती हैं अपनी कहानी, हमने चेंज कर लिया, पहले ये स्थिति थी, चेंज कर लिया, गीता पाठशाला खोल दी, बच्चों को कहा अब तुम बड़े हो गए हो, समझदार हो, शादी हो गई तुम्हारी, तुम अपने काम धंधे कर रहे हो, अब मैं तुम्हें अपने बंधन से मुक्त करती हूँ, तुम फ्री हो, कमाओ खाओ मौज करो, मुझे अब तपस्या करनी है, मुझे अपना जन्म जन्म का भाग्य बनाना है, कभी मेरी जरूरत पड़े तो पूछ लेना, नहीं तो तुम सब समझदार हो। इसने कर लिया अपने को मुक्त। और बच्चे माँ को इतना प्यार करते हैं, हमारी माँ तो देवी है, और जो पहली माँ थी उसके लिए दुआएं करते हैं, बाबा शिव बाबा जल्दी बुला लो इसको अपने पास, हम सुखी हो जाएं थोड़ा। अब देख लो आप किस तरह की माँ हो, पहली या दूसरी, कौन सा पसंद करेंगी बनना, पहली या दूसरी? सो बोल नहीं रही माताएं थोड़ा भारी पड़ रहा है बोलना। चलो सोच लेना, अपने को मुक्त करना जरूरी है और अपने हाथ में है, नहीं तो माताएं उलझनों में उलझी रहती है। उस दिन भी मैं क्लास में सुनाया था, वो सच्ची बात थी, मैं कोई कहानी बनी बनाई बनावटी नहीं सुनाता। माताएं मेरे पास ही मिलने आई, 70 साल की हो गई है, उसको कुछ बीमारी लगी है। मैंने कहा ठीक हो जाओगी, कोई बात नहीं, कहने मुझे लगता है मैं ठीक नहीं होंगी। क्यों? मुझे बहुत चिंता रहती है। क्या चिंता? मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का पोतरों का क्या होगा। मैंने कहा तो अमर हो क्या तुम, सदा ही जीती रहोगी, 5000 साल जियोगी क्या, मरना नहीं है क्या? मरना तो सबको ही होता है, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु। ठीक है तुम और 10 साल जी सकती हो, लेकिन ये थोड़ा ही तुम जीती रहोगी सदा, और जीती रहोगी तो बच्चे और पोतरे बहुत तंग करेंगे, ये भी तो जान लेना चाहिए। आजकल जितनी लंबी आयु उतने ही लोग दुखी, अगर शांत नहीं होते, अगर सुखी रहना नहीं जानते तो दुखी होते रहते हैं देख देख के। मैंने ये घर बनाया था, बच्चे सारा बिगाड़ रहे हैं, मैंने बिजनेस खड़ा किया था, ये तो मेरा बिजनेस नष्ट कर देंगे, बाप सोचता रहता है। क्या सोचना है? जब हम थे तब भी दुनिया चलती थी, जब नहीं होंगे और अच्छी चलेगी शायद। तो मस्त हो जाओ, आओ भाई वीरेंद्र भाई, मस्त हो जाओ सभी। मुश्किल से ये अवसर मिला है प्रभु मिलन का, वो सब कुछ देने आया है। अब बुद्धिमानी इसी में है कि उससे सब कुछ ले लें, ताकि पूरा कल्प अगला हमारा सुखों में बीते, न धन की कमी हो, न भाग्य की कमी हो, न परिवार से कोई परेशानी हो, प्यार ही प्यार रहे, ऐसा जीवन ऐसा भाग्य हम इस टाइम बना सकते हैं। अब आपके क्वेश्चंस।
ओम शांति। हम सभी का बहुत बहुत सौभाग्य है कि सूर्य भाई जी जैसे विशेष अनुभवी भाई हम सबके बीच हैं। जब भी कभी ब्राह्मण जीवन में कभी उदासी छाती है, कई प्रश्न उठते हैं, तो भाई जी बाबा के साथ साथ भाई जी याद आते हैं। तो आज हम सबके बीच भाई जी 10-12 प्रश्न आए हैं, जो आपने प्रश्न दिए हैं उसके उत्तर भाई जी से हम सुनेंगे। पहला प्रश्न है, निराकारी विदेही और अशरीरी स्थिति में क्या अंतर है, इसे योग में कैसे विजुलाइज करें?
बहुत अच्छा ये प्रश्न होता है और ये बार बार आता है। पहले मैं लेता हूं विदेही, अर्थ तो उसका भी यही है कि हम देह से न्यारे रहें, लेकिन जो हमारा अशरीरीपन है ये हमारी एक प्रैक्टिस है। चलते फिरते कर्म करते हम ये अभ्यास करें, मैं आत्मा इस देह की मालिक हूं, इस देह से निहारी हूं, यह होगी अशरीरीपन की प्रैक्टिस। और बहुत प्रैक्टिस करते करते हम निराकारी स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। निराकारी स्थिति का अर्थ होगा यहां जहां हमारे मन में बहुत कम संकल्प रह जाएं। और जैसे जैसे अशरीरीपन का अभ्यास बढ़ेगा, अब ध्यान से सुन लेना विदेही, कर्मों में हम उपराम रहेंगे, निष्काम भाव आ जाएगा, अटैचमेंट खत्म हो जाएंगे, तेरा मेरा खत्म हो गया, कर्म करते भी हम योगयुक्त रहने लगे, संसार में रहते भी संसार के प्रभाव से मुक्त रहने लगे, यह है विदेही स्थिति। सभी संसार के लोग दैहिक स्थिति में हैं, इसके विपरीत समझ लें, दैहिक देहभान में रहकर कर्म कर रहे हैं, और योगी देहभान से न्यारा होकर कर्म करता है, इसलिए उसकी स्थिति को विदेही स्थिति कहा जाता है। जैसे जनक को विदेही कहते थे ना, उसके पास राजाई थी, राजाओं के पास सुंदर महल, डांस गायन बाजे गाजे, अनेक प्रकार के वैभव, खाने के साधन सब होते हैं, लेकिन ये सब करते भी वो इनसे अनासक्त थे। मैं राजा हूं ये नहीं, राजा है ये कलयुग के अंत तक भी चलता रहा। हमारा जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट है, इसमें जो राजा थे वो ये मानते थे कि यहां का असली राजा तो शिव है, हम तो निमित्त राजा हैं। मेवाड़ के राजा भी यही मानते थे, राणा जो होते थे, हमारा जो शासन करने वाला है वो शिव है, एकलिंग, हम निमित्त हैं। तो इसको कहते हैं विदेही स्थिति। कर्म करते विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं। योग अभ्यास में जब हम बैठते हैं तो हम ऐसा अभ्यास कर लें, रोज एक बार कर लिया करें सवेरे, देह जैसे लोप हो गया और बच गई मैं चमकती हुई निराकार आत्मा, उड़ चली परम धाम, वहां बैठी हूं, वहां से वापिस आ गई देह में, फिर संकल्प कर लें देह जैसे कि है ही नहीं, मैं निराकार। अभ्यास बार बार करने पड़ेंगे तो अनुभव सहज होंगे।
दूसरा प्रश्न है, बाबा अलमाइटी अथॉरिटी है और हमको मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल देते हैं, तो क्या ये 8 पावर्स ही हैं या और भी पावर्स हैं?
देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हमें पावर मिलती हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जहां हमें अपनी शक्तियों को यूज करना होता है। मनन करना भी एक शक्ति है, प्यार में भी बहुत ज्यादा शक्ति है, पवित्रता सबसे बड़ी शक्ति है, ज्ञान भी बहुत बड़ा बल है, पुण्य कर्मों का भी हमें बहुत बड़ा बल मिलता है, लेकिन हमें बल की जरूरत पड़ती है माया को जीतने में भी। केवल 8 तरह से ही नहीं, काम को जीतना, क्रोध को जीतना, इन दोनों के लिए भी बहुत बड़े बल की जरूरत होती है। ज्यादा न सोचकर हमें ये फीलिंग रखनी है कि सर्वशक्तिवान ने अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दी हैं, ये सारी शक्तियां मेरे पास हैं, तो ये ऑटोमेटिकली होगा कि जहां जिस शक्ति की जरूरत होगी वो यूज होने लगेगी, क्योंकि हम शक्तिशाली हो गए हैं। अपनी शक्तियों को पहचानते जाना है, और केवल टाइटल को याद रखने से ही नहीं, लेकिन सर्वशक्तिवान से योग युक्त होकर उसकी शक्तियां ग्रहण करते चलना है, तो हमारी शक्तियां बढ़ती जाएंगी, और फिर जिस तरह भी यूज करना होगा। जैसे मैं बताऊं आपको, आज भी एक बहन का फोन आ रहा, एग्जाम देने गई थी। मैंने पूछा, कुछ दिन पहले फोन किया था, एग्जाम होने वाला है, क्या करूं मुझे बताओ। मैंने उसको कुछ विधि बताई, तो आज आप ही फोन किया, मैं एग्जाम तो दे आई, पर भाई जी पेपर देखते मैं तो घबरा गई थी। तो मैंने कहा कैसा रहा? कहा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि जब नर्वसनेस आ जाए, घबराहट हो जाए, तो क्या होता है पेपर देने वाले को, ऊपर की लाइन नीचे दिखेगी, नीचे के ऊपर, और घबराहट में जो याद किया था ना वो भूल जाएगा। तो निर्भयता भी एक शक्ति है, निर्भय होने के लिए भी शक्ति का यूज करना पड़ता है। तो हम अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान बनाएंगे तो शक्तियों की जहां जरूरत पड़ेगी वो काम करने लगेगी। जैसे बाबा मुरली में कह रहे थे दो तीन दिन पहले, कोई क्रोध करे तो तुम क्या करो, शांति में उसके सामने खड़े रहो। इसके लिए ताकत चाहिए या नहीं, बोलो? बहुत ताकत चाहिए। कोई बुरा गुस्सा ही थोड़ा ही करेगा, बुरा भी बोलेगा ना साथ में। अब वो आपको कड़वे शब्द बोल रहा हो और आप चुपचाप खड़े हो, होगा? हिलने लगेंगे कि कुछ तो बोलना पड़ेगा मुझे तो ऐसे तो नहीं होगा, इसके लिए बहुत शक्ति की जरूरत है। और बाबा ने जो हमें एक दूसरी चीज सिखाई कि ऐसी आत्मा के लिए हमेशा ये दृष्टि रखनी है, अब तो ये रहम की पात्र है क्योंकि परवश हो गई है, हम परवश न हो जाएं। वो आत्मा क्रोध के माया के वश हो गई ना, परवश हो गई है। अगर ये याद रहेगा तो हमारी पावर काम करेंगी और हम शांत रह सकेंगे।
अगला क्वेश्चन है,
चलो अब एक सेकंड में जंप लगाकर परम धाम में बाबा के पास।
अगला प्रश्न है, हम योग करते हैं तो हमारी याद बाबा तक पहुंचती है या नहीं, कैसे पता चलेगा?
पता करने की जरूरत ही नहीं, आपने याद किया और पहुंच गई। मनुष्य भी किसी को याद करता है, मनुष्य को याद करता है, उसके वाइब्रेशंस भी तुरंत उसके पास पहुंच जाते हैं, ये ऑटोमेटिक गति है। हम यदि शिव बाबा को याद करेंगे, यहाँ तो मनुष्य को याद करता है, बीच में बहुत सारे और वाइब्रेशंस हैं, देह है, और ये तो निराकार आत्मा निराकार परमात्मा को याद कर रही है। वाइब्रेशन सीधे पहुंचते हैं और हमारी याद पहुंचती है या नहीं, इसके अनुभव के लिए हमारा चित्त यदि शांत हो जाता है, यदि हमारे मन में बहुत खुशी हो जाती है, तो हमें समझ लेना चाहिए पहुंच गई। और यदि मन में उलझने हैं, यदि मन शांत नहीं हुआ तो नहीं पहुंचे।
अगला प्रश्न है, अभी ऑनलाइन क्लासेज सेंटर पर 1.5 साल से चल रहा है, भाई बहने कितना भी समझाने पर सेंटर पर नहीं आ रहे, तो क्या योग करें, क्या विधि अपनाएं?
किस टीचर का है ये प्रश्न? ये भाई बहने बैठे हैं ना भाई, जाते हो या नहीं जाते हैं? पक्का ऐसा तो नहीं वो ऑनलाइन की आदत पड़ गई तो क्या करेंगे, जाके सोते सोते भी सुन लेंगे, मुरली तो सुननी, थोड़ा नींद कर लेंगे, थोड़ा सो लेंगे, डबल फायदा हो जाएगा। देखो ये तो समय की मांग थी भाई, सेंटर बंद ही हो गए थे, सरकारें भी स्ट्रिक्ट थी, लॉकडाउन भी लग गए थे, तो जाना संभव नहीं था, लेकिन अब जब संभव है तो जाना ही चाहिए। पहली बात तो ये, क्योंकि सेंटर में जाना, बहुत जगह बहनों ने लॉकडाउन से पहले अमृत वेले के योग रखे हुए थे सेंटर्स में, अगर 100 भाई बहने क्लास में हैं तो 50 तो योग में आते थे। और एक जगह तो इतना अच्छा चलता है, हरियाणा का हिसार डिस्ट्रिक्ट है, सेंटर भी बड़ा है, वहां तो रोज सवेरे योग होता ही है 4 बजे से, और योग के बाद सभी को चाय मिलती है और मुरली सुना दी जाती है, पहली मुरली 6 बजे से चालू हो जाती है। कम से कम 500 भाई बहने आते हैं, मैं गया तो तब तो ज्यादा आते थे सवेरे ही। मैंने पूछा रोज का, रोज ही हमारा क्लास भरा रहता है, फिर दूसरी क्लास बाद में होती है, थोड़ा जो भाई लेट आते हैं वो लेट क्लास करेंगे। क्लास में जाने से चुस्ती बहुत रहेगी आपको, एक्टिव रहेंगे, नहीं जाना है तो ठंडे रहेंगे, मन भी ठंडा तन भी ठंडा, आलसल बेलापन आएगा। और ये चीज ऐसी है कि अगर एक बार आपके अंदर आलस और अलबेलापन बढ़ने लगा कुछ दिन, फिर इसको ठीक करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बहुत चुस्ती के साथ क्लास में अभी सभी जाना शुरू करें। रही बात टीचर्स बहनों की, सवेरे योग करके आह्वान किया करो सभी का, देवकुल की आत्माओं का भी, ताकि नए सब आए और जो भाई बहने आते थे उनका आह्वान करें, 10 मिनट सभी को जगाया करो सवेरे ही। कैसे जगाएंगे? मैं इष्ट देवी हूं, पूर्वज हूं, सभी को दृष्टि देंगे वहीं से और संकल्प करेंगे आ जाओ बाबा के पास सभी, मुरली का रस लेने के लिए आ जाओ, भगवान बात करता है मुरली में, आ जाओ बहुत बल मिलेगा आपको, आओ बाबा के पास। आह्वान करेंगे रोज, लेकिन इसमें बहनों का, निमित्तात्माओं का, जो भी हैं भाई हो चाहे, योग बहुत अच्छा चाहिए। तो रोज सवेरे ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जो लोग कोर्स भी करते हैं ना, चाहे आकर करो चाहे ऑनलाइन करें, उनको भी रोज सवेरे 15 मिनट वाइब्रेशंस देने चाहिए, उससे उनमें आगे बढ़ने की उमंग उत्साह रहेगी। कईयों को ज्ञान बहुत अच्छा लगता है लेकिन धारणाएं करना कठिन महसूस करते हैं, उन्हें सहज लगेगा। ये काम निमित्त आत्माओं को रोज सवेरे करना ही चाहिए। लेकिन कुछ बहनों ने ऐसा कर दिया था कि इतना टाइट कर दिया कि अगर कोई दरवाजे पे आ भी गया तो उसको कहते थे नहीं आओ, आना नहीं है। थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट होने से आने वाले लोग ढीले हो गए। अब इन्हें बुलाना पड़ रहा है आओ। हमारे नीचे एक इंजीनियर हैं भाई, वो हंसते थे बहुत, अपने बद्री भाई। पहले कहते थे समीप आओ, अब कहते थे दूर रहो, 6 फुट दूरी। पहले कहते थे रोज क्लास में आओ, अब कहते कोई ना आना, मना है आना। हमारे वहां भी तो मना हो गया था, शांतिवन में भी क्लास कुछ दिन चली ही नहीं। तो फिर से शुरू करेंगे। बाबा के बच्चे सभी समझदार हैं, क्योंकि आपको देखकर दूसरे लोग आएंगे, संगठन पावरफुल होगा और बाबा की सेवा बढ़ेगी।
अगला प्रश्न है, अभी बाबा का पार्ट और सेवा का पार्ट कैसा चलेगा?
बहुत अच्छा प्रश्न है। अब तक जो प्रश्न आए थे वो तो ये होते थे कि बाबा का पार्ट चलेगा या नहीं चलेगा आगे। इसमें थोड़ा चेंज कर दिया प्रश्नकर्ता ने, बड़ा अच्छा है, आपके प्रश्न बहुत सुंदर हैं, पूछने वाले बहुत बुद्धिमान हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न कम पूछे जाते थे। ज्यादा प्रश्न यही होते थे, मेरा पति शराब पीता है क्या करूं, मेरा बच्चा बुरे संग में चला गया है क्या करूं, पर आपके वाइज क्वेश्चंस। तो बाबा का पाठ तो सूक्ष्म रूप से चलता है। देखिए संगम युग 100 साल का है, 100 साल तक ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों का पाठ चलता ही रहेगा 2036 तक। पाठ की रूपरेखाएं चेंज होती जाएंगी। अब बाबा का साकार में आना तो समाप्त हो गया है, अब हमें उसके पास जाना है मिलन करने के लिए। और जब हम बाबा को बुलाते हैं वो अव्यक्त रूप से हमारे पास आते ही हैं, ये हमें संपूर्ण जानकारी और संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। अगली जो सेवा है हमारी, देखो इस ऑनलाइन सेवा का भी किसी को क्या पता था, अंदाज ही नहीं था कि ऐसी सेवा भी होगी, और ये कुछ अर्थों में बहुत अच्छी सेवा हुई है। हम जिन लोगों तक नहीं पहुंच सकते थे वो लोग भी ज्ञान सुनने लगे, ज्ञान को एप्रिशिएट करने लगे, बहुत अच्छे अनुभव रहे हैं सेवा करने वालों के। बाउंड्री भी टूट गई, ये तेरा सेंटर ये मेरा सेंटर, अब कोई किसका भी सुने, कहीं भी क्लास में जाए, ऑनलाइन तो कहीं भी जा सकते हैं ना। तो ये भी बहुत अच्छा हुआ, बेहद की दृष्टिवृत्ति हुई। हमारा एक ईश्वरीय खजाना ग्रुप है, उन्होंने 2 लाख से ज्यादा लोगों को कोर्स करा दिए, देखो आप, एक ग्रुप ने। और ऐसे बहुत सारे ग्रुप बाबा के बच्चों के कार्यरत हैं, जो भिन्न भिन्न तरह से पालना भी कर रहे हैं सबकी। देखो मुरलियां सबको जा रही, मुरली के भिन्न भिन्न सार, कहीं वरदान कहीं कुछ कुछ जाते रहते हैं। अगली सेवा जो फाइनल सेवा, इसके बाद क्या आएगी वो तो हमें पता नहीं, लेकिन जो फाइनल जिससे वंडरफुल सेवा होगी और देवकुल की करोड़ों करोड़ों आत्माएं आ जाएंगी बाबा के पास, वो होगी साक्षात्कार के द्वारा। तो अगला जो बड़ा रोल चलने वाला है वो साक्षात्कार का चलेगा। जिन आत्माओं ने अपनी स्थिति को बहुत महान बना दिया है, जो संपूर्ण पवित्र बन गए होंगे, उनके द्वारा साक्षात्कार होंगे। और साक्षात्कार की चाबी तो हमें पता ही है किसके पास है, वो हमारे पास नहीं है, वो शिव बाबा के ही पास है। वो ये चालू करेगा काम, और जहां तहां साक्षात्कार होंगे। हमें उन महान योगियों का पता भी नहीं होगा जिनके द्वारा साक्षात्कार होंगे। हम किसी को बहुत साधारण बहन समझते होंगे, जो गुप्त है, जिसको कोई जानता नहीं है, उनके द्वारा साक्षात्कार होंगे। मैं तो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि मैं सेंटरों में बहुत जाता हूं। कई बहनें उनकी सेवाएं देखकर हम सोचते हैं कि जब ये बहन यज्ञ में जाती होगी, एकोमोडेशन वाले ने एक घंटा बैठा देते होंगे, उन्हें कोई नहीं जानता, सिंपल बेचारी, और उनकी क्लास आप हैरान हो जाएं देख के। एक जगह में गया लॉकडाउन से पहले, कोरोना से पहले, मुझे कहा भाई जी 15 मिनट के लिए भी आ जाओ। बहुत भोली सी बहन। अब मैं तो जानता हूं जो भोले हैं उनमें से कई बहुत महान हो सकते हैं। मैंने कहा जरूर आएंगे, आधे घंटे पे ही था। हम गए, होल बनाया हुआ था बहनों ने, होल अभी कंप्लीट नहीं था, केवल सीमेंट हुआ था, फर्श भी नहीं पड़ा था, अभी टाइल्स वगैरह नहीं लगी थी। होल था ओम शांति भवन से 125 गुना बड़ा। क्लास में भाई बहने बैठे थे 2000। वो बहन मेरे पास बैठी थी, अति भोली है, मैं पहचानता भी नहीं उसे, अभी मुझे उसका चेहरा याद नहीं वो कौन थी। मैंने पूछा बहन जी स्टूडेंट आपके ही हैं, कहीं से उधार मंगाए हैं? मैं हंसी में पूछा, कहा नहीं हमारे ही हैं। अच्छा, मैंने कहा कितने सेंटर हैं आपके? कि 40 गीता पाठशालाएं हैं। बहने आई हुई थी, मैं देखने लगा कि इनको यज्ञ में कोई पहचानता नहीं है, कोई नहीं पहचानता उनको। जिनको पहचानते हैं उनके सेंटर्स में थोड़े स्टूडेंट रहते हैं, और जिनको कोई नहीं पहचानता वो उनके बगीचे हरे भरे सुगंधित हैं बहुत। मैं ये सब देखता रहता हूं, और मेरे मन में तब ये बात रहती है, वाह प्रभु तेरी लीला, किसके द्वारा क्या करा रहा है तुम, ये नीचे वाले नहीं जान सकते। तो साक्षात्कार होंगे उनके, दो ही शर्त हैं इसके पीछे, जो संपूर्ण पवित्र बन गए होंगे और जो श्रेष्ठ योगी बन गए होंगे। ये सेवाओं का अंतिम स्वरूप होगा। फिर आपको किसी को संदेश देना, पर्चे बांटना, इस सब की कोर्स कराना इसकी जरूरत न होगी। कोर्स भी एक दिन में, एक घंटे में ही 7 दिन का कोर्स हो जाया करेगा बस।
नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, विनाश काल का समय चल रहा है तो ऐसी घड़ी में हमारा पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए, किन बातों पर विशेष अटेंशन देना चाहिए?
देखिए पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए वो तो रोज मुरलियों में आ ही रहा है। जो कुछ भी आता है वो सब हमें करना होता है, एक भी चीज हमसे छूटे नहीं, परंतु सार रूप में श्रेष्ठ स्वमानधारी, साक्षी भाव में स्थित, बाबा से बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाएं, पुण्य कर्मों का खाता बहुत बढ़ा दें, ये 4 चीजें आप याद रखेंगे। क्योंकि विनाश काल जो शुरू हुआ है, कोरोना तो सबने देखा, ये विनाश का छोटा सा ट्रायल पीरियड, क्या कहते हैं वो फिल्म से पहले क्या चलता है उसका,
ट्रेलर,
ये ट्रेलर था, असली सीन तो भी आने वाले है, इसलिए बहुत निर्भयता भी चाहिएगी। जो कुछ होगा उसको स्वीकार भी करना पड़ेगा, अंडरलाइन करें इस बात को आप, जो कुछ होगा उसे स्वीकार करना ही होगा, नो क्वेश्चन नो कंप्लेंट, ये साक्षी स्थिति है, ये करना होगा। योग युक्त ऐसा अच्छा कि भविष्य का नशा रहेगा, क्योंकि वर्तमान तो एक खेल खत्म हो रहा है। तो हमें निर्भय भी होना है, साक्षी भी होना है, योगयुक्त होना है, और सबसे बड़ी चीज उसका अभी ज्यादा वर्णन नहीं किया जा रहा है, सबको निर्मोही भी बनना होगा। सुखी वही रहेंगे जो निर्मोही होंगे, क्योंकि मोह के बंधनों में हर व्यक्ति जकड़ा हुआ है, केवल माताएं नहीं, सब। और एक चीज और बता दूं, ये प्रश्न आया है तो, संसार में अब बीमारियों के रूप में डॉक्टर मानसिक रोग बहुत बढ़ रहे हैं और इसकी सुनामी आ रही है तेजी से। इसलिए अपने को व्यर्थ से मुक्त, चिंताओं से मुक्त, भय से मुक्त, ज्यादा सोचने से मुक्त करना ही है। जो बहुत खुश रहेंगे, हर चीज को एक्सेप्ट करके हल्का रहेंगे, वो मानसिक रोगों से मुक्त रहेंगे। और साथ में जो श्रेष्ठ योगी हैं, उन्हें सकाश देकर दूसरों को मदद भी बहुत करनी होगी। तो बहुत सारे काम हैं, एक नहीं, हम साधनाएं अपनी करते रहें और अपने को तैयार करें, बाबा आप ही हमसे योग्य सेवा कराता रहेगा।
अगला प्रश्न है, एक बाबा का बच्चा ज्ञानी योगी है, धारणाएं भी अच्छी है, फिर भी उसके पुराने संस्कारों की वजह से परिवार में सभी डिस्टर्बिस होती है और वह आत्मा समझती भी है पर वो कंट्रोल नहीं कर पाती, तो क्या हम करें, क्या उसके साथ व्यवहार करें, क्या पुरुष?
नहीं, व्यवहार नहीं, सभी मिलकर उसको आधा घंटा योगदान दे रोज, क्योंकि ऐसी कई आत्माएं हैं जो सेवाओं में भी हैं, सेवाओं की लगन भी उन्हें बहुत है, लेकिन अपने किसी संस्कार के कारण टकराव में ज्यादा आते हैं। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, और उनका जीवन भर ये संस्कार चलता ही आ रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है कि उन्हें पता है कि मेरे अंदर ये संस्कार है, तो हम उन्हें मदद करेंगे। किसी का थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी का संस्कार होता है, किसी का क्रोध का संस्कार होता है, किसी का अहम का संस्कार होता है, इनसे सेवाओं में डिस्टर्बेंस होता है और वो व्यक्ति भी खाली रहता है, क्योंकि सेवाएं चाहे हम कितने भी कर रहे हों, चाहे हम रात दिन सेवाओं में लगे हों, लेकिन अगर हम खुद डिस्टर्ब हैं और दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, यदि हमारे अंदर निष्काम भाव नहीं है, मन शांत की इच्छा बहुत है, यदि हम दूसरों को आगे ही नहीं बढ़ने देते, तो हमारा खाता जमा होने के बजाय माइनस में जाता है, घाटा होता है, जमा कुछ नहीं, जमा को भी खाते रहते हैं। इसलिए जो भी सेवाओं के फील्ड में हैं, उन्हें ये बातें अच्छी तरह समझकर, बाबा तो कहा करते थे, सेवा छोड़ दो, पहले स्थिति बनाओ। यही भगवान की भी श्रेष्ठ श्रीमत है और एक समझदार मनुष्य को यही करना चाहिए।
अगला प्रश्न है, आत्मा पर कौन कौन से बोझ हैं, उसे कैसे खत्म करें?
कौन कौन से बोझ, क्या यहाँ तो बोझों की लंबी लिस्ट है। हर एक का बोझ अपना अपना है, सबके बोझ समान थोड़ा ही है, किसी का कुछ बोझ है, किसी का कुछ बोझ है। बोझ बाबा को अर्पित करें, अपने स्वमान को इतना अच्छा उठा दें ऊपर कि हमें बोझ बोझ लगे ही नहीं। सुनी होगी आपने कहानी, एक माता अपने बच्चे को उठा के ले पहाड़ी चढ़ रही थी, अब बच्चे गोद में ही रहते हैं, बच्चा थोड़ा मोटा था, वजन ज्यादा था। एक सन्यासी ने कहा, रे माता इतना वजन लेके चढ़ रही हो, बहुत मुश्किल हो रहा है। वो देखने लगी, वजन तो सिर पे होता है ना, कि कहां, मैं तो कुछ उठाया नहीं। समझ गए ना राज, बच्चे को उसने लिया हुआ, उसमें 10 किलो वजन है, लेकिन उसको 10 किलो थोड़ा ही लग रहा है। किस बात से हम भारी होते हैं, ये हमारे अपने ऊपर होता है। किसी को छोटी बातों में भारी होने की आदत होती है, और याद रखेंगे, ये मेडिकल की बात है, जो अपने दिमाग पे ज्यादा प्रेशर रखते हैं ना, उनको बीमारियां ज्यादा होती हैं, घुटने दर्द भी ज्यादा होते हैं। इसलिए प्रेशर नहीं रखना, हल्का करो। ज्ञान बहुत बड़ा मिला है, हर बात को पॉजिटिवली लेना, हर बात को सहज भाव से लेना, बड़ी बात को छोटा कर देना, ये संकल्प रखना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हल्का करें अपने को, नहीं तो क्या हो रहा है आजकल, बहुत अच्छी तरह सुन लें आप सभी, मनुष्य का ब्रेन बहुत कमजोर हो चुका है। सभी के जन्म जन्म के कर्म, मैं कर्म ही बोल रहा हूं, वो जागृत हो रहे हैं। इसलिए अगर किसी को चिंता लगती है तो उसको रात को नींद नहीं आ रही है। इसलिए छोटी-छोटी बातों की चिंताओं को छोड़ दें। एक बच्ची की कहानी, मेडिकल का एग्जाम देना चाहती है, तैयारी हो नहीं रही, अब उसे नींद नहीं आ रही। मैंने कहा सोओगी नहीं तो बाकी भी तैयारी कैसे करोगी, पढ़ोगी कैसे। छोटी सी चिंता लग जाए ना, माताओं की कहानियां हैं, बच्ची नीट का एग्जाम दे रही है, क्लियर नहीं हो रहा, उसको मेडिकल में जाना है, कोई गेट का एग्जाम दे रहे, क्लियर नहीं हो रहा है, माँ को नींद नहीं आ रही, बच्चे ठीक हैं, माँ नहीं सो पा रही है। तो अगर आपको नींद की समस्या हो गई तो सारी समस्याएं बढ़ जाएंगी जीवन में। इसलिए हल्के हो जाओ, हल्के हो जाओ। अब ये खेल ज्यादा दिन का नहीं रहा है, पूरा होने वाला है। चलो
अगला कुछ प्रश्न है। बाबा हमेशा कहते हैं कि त्रिकालदर्शी की स्टेज पर स्थित होकर हर कर्म करो, तो त्रिकालदर्शी स्टेज की स्थिति क्या होती है?
त्रिकालदर्शी का सीधा सा अर्थ है, जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ सोच, उससे पहले जरा सोच लें कहीं इसका परिणाम बुरा तो नहीं होगा। बस डॉक्टर भी सोचता है ना, भाई ये दवाई दे रहे हैं कहीं साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएंगे, कहीं इससे ये चीज और तो नहीं बढ़ जाएगी, अलग अलग बातें सोची जाती है ना। सोच समझ के कर्म करना, सोच समझ के बोलना, इसको त्रिकालदर्शी स्थिति कहते हैं, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है।
अगला प्रश्न है, अमृत वेला संकल्प बहुत तेज चलते हैं, तो संकल्प को कैसे रोकें, क्या पुरुषार्थ करें?
मैंने बताया भाई, उसकी विधि बताई, सवेरे सवेरे करना अच्छा, और अच्छी विधि है कि सोने से पहले 5 स्वरूपों का अभ्यास करके सोना। लेकिन ध्यान ये देना पड़ेगा सारा दिन कि मन की स्पीड तेज न हो रही है आजकल। मैं आपको सावधान कर रहा हूं इस चीज से, आजकल समय ऐसा, समय का भी इफेक्ट है कि एक विचार अगर मन में आ गया, वो चल ही रहा है, उसको रोक नहीं पा रहे हैं लोग, ये स्थिति बन गई है। इसलिए कोशिश करना, ज्ञान क्लास अच्छी सुन लो, स्वमन का अभ्यास करो, लिख लो मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं उठते ही 108 बार, तो मन थोड़ा धीमा हो, शांत हो, क्योंकि अगर इसको शांत न किया ये मनुष्य के जीवन को नष्ट कर डालता है, मानसिक रोग बढ़ रहे हैं इससे। पिछली बार मेरे पास एक माता आई थी पिछले टर्न में, बेचारी बहुत दुखी थी और रोने लगी, 4-5 माताएं थी उसके साथ, भाई जी बहुत नहाने की आदत पड़ गई है, मुझे इतनी दया आई उस पे, मैंने कहा कितना नहाती हो, कहा सवेरे तो 4 घंटे, मैंने कहा बच्चों का नाश्ता खाना कौन बनाता है, बस इसी से तो मैं दुखी हूं, मैं बाथरूम में रहती हूं, बच्चे बेचारे कुछ खा पी के स्कूल चले जाते हैं, शाम को कहा मैं नहाने जाती हूं और बाथरूम में बैठी रहती हूं, वहीं सो लेती हूं रात को, कितनी दयनीय स्थिति। कहा हमारे बच्चे बहुत प्यार से मुझे निकालते हैं बाथरूम से, कुछ कुछ खिलाते पिलाते हैं, ये सब कर्मों का खेल, इसलिए बहुत सावधान हो जाएं। ज्यादा सोचने की आदत को ज्ञान और योग स्वमान से ठीक करें, नहीं तो ये महामारी बन जाएगी।
लास्ट क्वेश्चन है, अभी तो प्रजातंत्र है, फिर प्रजातंत्र से राजतंत्र कैसे आएगा?
बड़ा गहरा प्रश्न पूछ लिया। यही प्रश्न निर्वैर भाई ने अब से 50 साल पहले अव्यक्त बाबा से पूछा था। बाबा कमरे में आए थे और बाबा ने उत्तर दिया था। मेरे आगे कैमरे रखे हैं, मैं यहाँ उत्तर नहीं दे सकता वो, पर जब तंत्र असफल हो जाएगा और ये सब राजतंत्र में बदल जाएगा, क्योंकि देवताओं का राज आने वाला है, तो चक्र ऐसा घूमेगा कि सत्ता देवताओं के हाथ में यानी श्री कृष्ण के हाथ में आ जाएगी। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी का, कि सभी प्रश्नों का साठ में और क्लियर हम सबको मिल गया उत्तर।